आज जिस प्रवचन श्रृंखला को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, उसका संबंध भी परमात्मा के सत्य परिचय से ही है। प्रवचन वक्ता हैं ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन जी, जो कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माउंट आबू स्थित मुख्यालय में लगभग 45 वर्षों से राजयोग की शिक्षा दे रही हैं। उन्होंने देश विदेश भ्रमण करके अनेक आत्माओं को अपने अलौकिक अनुभवों से मार्गदर्शन दिया है।
ओम शांति। सत्य परमात्मा की पहचान। परमात्मा एक है और वो सत्य है। आज सुबह स्वयं की पहचान मिली, हम कौन हैं ये जानकारी मिली, अर्थात योगी की पहचान मिली, साधक की पहचान मिली। क्या पहचान मिली? कि हम यह देह नहीं है, लेकिन बोलने वाली, सुनने वाली, देखने वाली, सोचने वाली, समझने वाली, अनुभव करने वाली, मैं एक आत्मा हूं। अवश्य इस बात का निश्चय कर लिया होगा, समझ तो लिया होगा, लेकिन उसके बाद निश्चय भी कर लिया होगा, और मैं देह से अलग हूं ये भी समझा, और फिर अनुभव करना किया। एक होता है समझना, फिर होता है उस पर निश्चय करना, विश्वास रखना, और तीसरा होता है उसका अनुभव करना। अब समझ तक ही पहुंचे हैं, विश्वास तक पहुंचे हैं, या अनुभव तक भी पहुंच गए, या समझा ही नहीं, ये भी होता है। कई बार है समझा है पर विश्वास नहीं है, कई बार होता है विश्वास है लेकिन अभी अनुभव नहीं। तो किस कैटेगरी में हर एक अपने आप को रखेगा वो अपने आप से पूछे, क्योंकि राजयोग का पहला कदम यही है, स्वयं को पहचान कर, आत्मनिश्चय कर, उसका अनुभव कर, फिर आगे बढ़ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। अगर स्वयं को रियलाइज नहीं किया, अनुभव नहीं किया, तो फिर परमात्मा को पहचानना भी मुश्किल है, असंभव ही है। और अगर खुद को पहचान लिया तो परमात्मा को पहचानना बहुत सहज है। अब कैसे वो सहज है वो हम अभी देखेंगे। क्या मिली अपनी पहचान? कि इस देह के भीतर मैं अजर अमर अविनाशी शक्ति हूं, जो शरीर की इंद्रियों के द्वारा कर्म करती हूं, और वास्तव में इन इंद्रियों के द्वारा ही अनुभव करती हूं। अनुभव करने वाली आत्मा है। विज्ञान के द्वारा हमें मालूम पड़ा है कि मान लीजिए पेट में भूख लगी, पर ये पेट को अनुभव नहीं होता है कि भूख लगी है, पेट को थोड़ी अनुभव होता है। कई बार कहते हैं पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, भूख लगी है, लगता है भूख लगी है, पर पेट को अनुभव नहीं होता है कि भूख लगी है, मस्तिष्क में ही अनुभूति है। पर मस्तिष्क में भी अनुभव मस्तिष्क नहीं करता, ये तो साधन है, परंतु अनुभव कौन करता है उसमें? आत्मा। कई बार ऐसे होता है कि मस्तिष्क से संबंध तोड़ देते हैं, कई बार ना दाढ़ में दर्द है, सड़ गई है, निकालना है, तो इंजेक्शन लगा देते हैं, ताकि दर्द ही नहीं होगा, वो सुन्न कर देते हैं स्थान के कि मस्तिष्क तक उसका मैसेज नहीं जाएगा। तो मस्तिष्क में अनुभूति का कक्ष है, परंतु अनुभव करने वाली जो शक्ति है, जो मस्तिष्क के द्वारा अनुभव करती है, वो आत्मा है, क्योंकि वो चेतन शक्ति है। आत्मा निकल गई शरीर को, आप क्या अनुभव कराएंगे और वो क्या वर्णन करेगा कि मैं कुछ अनुभव कर भी रहा हूं। कई लोग हमें कहते बहन जी आप आत्मा 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 कहते, पर शरीर का भी तो महत्व है। हम कहते क्यों नहीं महत्व है, उनका अपना स्थान है। जैसे गाड़ी में ड्राइवर का अपना स्थान है, गाड़ी का अपना स्थान है, दोनों एक दो के बिना बेकार है। लेकिन आप केवल गाड़ी को तो नहीं देखेंगे ना, गाड़ी में ड्राइवर होगा तभी उसका मूल्य है। आपको टैक्सी चाहिए, बॉम्बे जैसे शहर में टैक्सी कदम कदम पर चाहिए, कहाँ तक बसेस में ट्रैवल करेंगे, बहुत दूर कई बार जाना होता है, कई जगह बस जाती भी नहीं, तो टैक्सी लेंगे। तो हम क्या पुकारेंगे, टैक्सी टैक्सी, है ना? बस सुनता कौन है, टैक्सी थोड़ी सुनती है, सुनती है क्या? टैक्सी तो साधन है, ड्राइवर बैठा होगा तो वो सुनेगा और टैक्सी को लेकर आएगा, पर नाम तो टैक्सी पुकारेंगे ना, या रिक्शा, आजकल रिक्शाएं बहुत चलती है और शहरों में। तो ये शरीर भी एक वाहन है, साधन है, इसके अंदर अनुभव करने वाली मैं आत्मा हूं। और मैं आत्मा कैसी हूं, एक ज्योति हूं। ये इन आंखों से नहीं देखी जा सकती ये ज्योति, न ये पैदा होती है, न इसका नाश होगा, ये अनादि अविनाशी है। हम सब आत्माएं अनादि अविनाशी है। तो थोड़ा सोचने की बात है कि आत्माएं अनेक, परमात्मा एक, इसलिए परमात्माएं नहीं कहेंगे। और परमात्मा शब्द में ही परमात्मा की पहचान है। इसी शब्द का आप संधि विच्छेद करें तो आपको दो शब्द मिलेंगे, परम प्लस आत्मा। परम और आत्मा को जोड़ दिया तो क्या बन गया, परमात्मा। व्याकरण है ये, इंग्लिश में जिसे कहते हैं सुप्रीम सोल। परमात्मा भी एक आत्मा है लेकिन परमात्मा है, इतना सहज है समझना। जैसे मिनिस्टर्स अनेक हैं लेकिन एक होगा प्राइम मिनिस्टर। विधानसभा में भी सब एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, पर एक होगा चीफ मिनिस्टर। अनेक कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, लेकिन एक होगा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, वो एक ही होगा। तो आत्माएं अनेक हैं और परमात्मा एक है। अगर ये बात हम समझ जाएं तो परमात्मा को पहचानना मुश्किल नहीं है। इसीलिए कहा आत्म अनुभूति परमात्मा अनुभूति का पहला कदम है। परंतु कई लोग इसको उल्टे रूप से लेते हैं, वो समझते नहीं इसका क्या राज है, और वो क्या समझते हैं, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे कह देते हैं कि आत्मा परमात्मा बन सकती है। अब यहां हमें समझना होगा, जब परमात्मा के सत्य स्वरूप को पहचानेंगे, उनके कर्तव्यों को पहचानेंगे, उनके गुणों को पहचानेंगे, तो महसूस करेंगे उनकी परम शक्ति को। क्योंकि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये मनुष्य ये भी नहीं समझता, उसका स्वरूप क्या है वो तो समझ ही नहीं पा रहा है, वो कहाँ है ये भी नहीं समझ पा रहा है, वो क्या करता है क्या नहीं करता ये भी नहीं समझ पा रहा है। इसके कारण कितने सारे मंतव्य संसार में ईश्वर के बारे में हो गए हैं। कोई कह देगा आत्मा ही परमात्मा है, कोई कह देगा आत्मा तो उसका अंश है, टुकड़ा है, कोई कह देगा कि परमात्मा सब जगह है, कण कण में है, पत्थर भीतर सब में है, कण कण में है, कोई कह देगा कि सब नाम रूप उसी के ही है, कोई कह देगा कि उसका कोई नाम रूप ही नहीं है, और यहाँ तक भी कोई कह देते हैं कि ईश्वर विश्वर जैसी कोई चीज ही नहीं है, ऐसे भी लोग हैं कहने वाले। तो जितने मुंह उतनी बातें ईश्वर के बारे में क्यों है? सबसे पहला कारण है कि इन आंखों से हम उनको देख नहीं सकते। सबसे पहला कारण, अगर आंखों से देख सकते होते तो इतनी सारी बातें नहीं होती। जैसे हाथी का एक मिसाल दिया जाता है कि पांच नेत्रहीन व्यक्ति थे, उनको जाके कहा गया कि जाओ चिड़िया घर में अनुभव करके और हाथी कैसा होता है, मिसाल है। तो हाथी का अनुभव करने के लिए कभी दिखाई तो उन्हें देता नहीं था, तो किसने उसकी पूंछ पकड़ी, किसने उसकी सूंड पकड़ी, किसी ने उसके कान पकड़े, किसी ने उसकी टांगे पकड़ी, किसी ने उसका पेट पकड़ा। अब हर एक ने अपनी अपनी तरफ से अनुभव कर लिया। जब वापस आए तो जो उनकी अल्प समझ थी, जो उन्होंने अनुभव किया अपने हिसाब से, और जहां तक उनको ज्ञान था उसी अनुसार उन्होंने जवाब दिया। एक ने कहा हाथी तो एक पंखे जैसा था, क्योंकि उसके कान पकड़ लिए वो हिल रहे थे हाथ पंखे की तरह। दूसरे ने उसकी सूंड पकड़ ली, वो सांप की तरह हिल रही थी, तो कहा वो तो सांप जैसा था। तीसरे ने कहा कि उसकी वो तो रस्सी जैसा था कि पूंछ पकड़ ली पतली पतली। चौथे ने कहा नहीं वो तो दीवार जैसा था क्योंकि उसका पेट पकड़ लिया। पांचवे ने उसका कि तो खंभे जैसा था क्योंकि उसके टांगे पकड़ ली। अब हाथी कैसा था? कोई कहे पांचों जैसा था, ये भी सही नहीं है क्योंकि केवल एक कान ही थे, वो भी कोई पंख का काम थोड़ी करते, वो तो केवल उनके चलो उनके लिए हाथी के लिए पंख का काम करते होंगे, कोई मक्खी वग्गी बैठी तो हिला देते होंगे, परंतु दूसरों के लिए थोड़ी वो पंखा का काम करेंगे, या दीवार का काम, या सांप का काम, या रस्सी का काम। तो हाथी कैसा है ये तो वास्तव में पांचों ही गलत है। तो परमात्मा को इन आंखों से तो हम देख नहीं सकते, पर जैसी जैसी जिसकी भावना है ना, उस अनुसार उस भावना का भाड़ा मिल जाता है। कभी दर्शन हो जाते हैं, कोई हनुमान का भक्त होगा तो हनुमान का दर्शन हो गया, कोई देवी का भक्त होगा देवी का दर्शन हो गया, कोई गणेश जी का भक्त होगा तो गणेश जी का दर्शन हो गया, कोई क्राइस्ट को मानने वाला होगा तो उसी में से क्राइस्ट का ही दर्शन हो जाएगा। जैसी भावना होती है वैसा ही उसे फल मिलता है, परंतु उसका सत्य स्वरूप तो कुछ और ही होगा ना। क्योंकि भगवान के ये भी महावाक्य है, जो भूतों के उपासक है वो भूतों को प्राप्त होते हैं, जो मेरे उपासक है वो, जो देवों के उपासक है वो देवों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरे उपासक है वो मुझे प्राप्त होते हैं। अपने को सर्वोच्च रखा, हर बात में सर्वोच्च, सर्वोपरि, सर्वोत्तम। तो वो सर्वोत्तम शक्ति, सर्वोच्च शक्ति कौन सी है उसको हमें समझना होगा, और वो एक ही है। इसीलिए परमात्मा एक है, वो सत्य है। जो चीज बदलती रहती है वो सत्य नहीं मानी जाती है। अध्यात्म की भाषा में जो चीज अस्थिर है वो असत्य है, हालांकि विज्ञान की भाषा में जो चीज दिखाई देती है वो सत्य है, पर अध्यात्म की भाषा में जो चीज दिखाई देती है वो सब अस्थिर है, इसलिए वो सत्य है। इसलिए कई बार अध्यात्म और विज्ञान का झगड़ा होता है, परंतु दोनों को मिला सकते हैं हम कि सत्य केवल स्थिर चीज नहीं है, वो तो है ही है, स्थिर जो है वो सत्य है, पर स्थिर के साथ अविनाशी भी चाहिए। अगर वो अविनाशी नहीं है तो वो सत्य नहीं है। प्रकृति के अंदर हर वस्तु जो बनी है वो विनाशी है, और पांच तत्व तो अविनाशी है ना, उसमें से जो चीज बनी फिर वो बिगड़ती है, वो तत्वों में विलीन हो गई, वो रूप सामने से खत्म हो जाएगा, पर तत्व तो फिर भी अविनाशी है। तो उस हिसाब से प्रकृति भी सत्य है, लेकिन वो परिवर्तनशील है। और परमात्मा को जब सत्य कहते हैं तो वो अविनाशी तो है ही है लेकिन साथ साथ अपरिवर्तनशील भी है।
मेडिटेशन अथवा योग वह प्रैक्टिकल टूल है जिसके आधार से हम अपने जीवन में ज्ञान की धारणा सहज रूप से कर सकते हैं। राजयोग का अभ्यास हमारे मन और बुद्धि को एकाग्रचित, शांतचित और कुशल बनाता है। आज की राजयोग कमेंट्री का उद्देश्य है कि परमात्मा की यथार्थ याद करने के लिए हम अपने मन को कौन से विचार दें। आज हम परमात्मा के यथार्थ नाम, यथार्थ रूप और यथार्थ धाम का चिंतन करेंगे। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, ज्योति का पुंज, इस हड्डी मांस के जड़ शरीर से भिन्न एक चैतन्य सत्ता। मैं आत्मा अति सूक्ष्म प्रकाश का सितारा हूं। इस देह में मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य विराजमान हूं। इस जड़ शरीर अथवा कर्मेंद्रियों का संचालन करने वाली मैं चैतन्य शक्ति हूं, ऊर्जा हूं। मुझ आत्मा के पिता परमात्मा शिव है, जिन्हें प्यार से शिव बाबा कहते हैं। परमपिता परमात्मा शिव सभी मनुष्य आत्माओं के पारलौकिक पिता है। कलयुग के अंत के समय में जब शिव पिता आते हैं तो वह समय संगम युग कहलाया जाता है। ये वही समय चल रहा है जबकि दुनिया तमो प्रधान बन गई है। इस गहरे तमस से रोशनी की ओर ले जाने के लिए शिव परमपिता परमात्मा आए हुए हैं। यही वो गहन रात्रि का समय है जब सर्व आत्माएं विकारों में फंसी हुई हैं। अपने सत्य पिता की पहचान करके मैं आत्मा सच्ची शिवरात्रि मना रही हूं। मुझ आत्मा के पिता का रूप अति सूक्ष्म निराकार ज्योति बिंदु के समान है। मेरे पिता रूप में तो बिंदु है किंतु गुणों में सिंधु है। उनका सुनहरा प्रकाश मुझ आत्मा को उनकी ओर खींच रहा है। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि रूपी वाहन के द्वारा इस देह से अलग होकर अपने पिता के घर जा रही हूं। शिव पिता का घर इन सूर्य चांद और तारागण से पार बहुत दूर ऊपर एक सुनहरे लाल प्रकाश से भरे धाम में है। उसका नाम है परम धाम। शांति धाम। शांति के सागर मेरे पिता इस स्वीट साइलेंट होम में रहते हैं, मैं आत्मा भी अपने पिता से मिलने इस शांति की दुनिया में आ गई हूं। यहां चारों तरफ दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। यहां कोई आवाज नहीं है, गहरी शांति है। यह है शिव पिता और हम बच्चों का घर। मुझ आत्मा का यह असली घर है। पांच तत्वों से पार की ये दुनिया जहां सिर्फ आत्माएं शांति में निवास करती हैं, यह मुक्ति धाम है जहां आत्मा दुख सुख हार जीत मान अपमान से मुक्त होकर रहती है। यही निर्वाण धाम है, यही ब्रह्मलोक है। अब मैं आत्मा कुछ देर शिव पिता के सानिध्य में अपने घर शांति धाम में ठहरती हूं। ओम शांति।